ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
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 ओम अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानंजनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकता मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वंदेहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णकरुणासिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेशगोपिकाकान्त श्रीराधाकान्त नमस्तुते। सप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि श्रीहरिप्रिये। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा
हरे कृष्णा।
हम जब जब पीजी आते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हमारा ये दूसरा परिवार है। भगवान को परिवार होता है और उसके अनुरूप हम अपना परिवार बनाते हैं, लेकिन भगवान के परिवार में भगवान का संतोष ही एकमात्र जीवन होता है। अपने परिवार में हम अलग अलग संतोष की मात्रा बना देते हैं अपनी अपनी इच्छाओं, इसलिए अपने परिवार में हमेशा क्लेश दुख इत्यादि सहन करते हैं। भगवान के परिवार में ऐसा कोई महसूस नहीं होता। इसका कारण समझना चाहिए। भक्ति ये सब कारण को रहस्य को खुला कर देती है। भगवान का परिवार कैसे बनता है? जहां भगवान के ही एकमात्र गुणगान गाए जाते हैं ऐसे परिवार में कभी क्लेश नहीं होता। लेकिन भगवान के बारे में ना समझ होने के कारण भी हम अलग अलग भगवान बना बैठते हैं। जो भगवान है उसको साइड पे रख देते हैं, दूसरे को भगवान बनाकर अपनी इच्छा पूर्ण करने के लिए हम काम करते हैं। लेकिन शास्त्र ऐसा नहीं कहता। हम ना समझ होकर शास्त्र भी अपने ढंग से ही समझना चाहते हैं, तो कैसे हमारा परिवार और जो आवश्यकताएं हैं, जो समझने की सच्ची समझ पाने की आवश्यकता है, वो कब हमें पता चलेगा? इसलिए ज्यादातर धार्मिकता में अंधविश्वास बहुत होता है। जो मूल हेतु है भगवान को पाने का, भगवान को बजने का या धर्म पालन करना, उस मूल हेतु का हम भूल ही जाते हैं। तो हमें उसका रहस्य भक्ति ही सिखाती है। ये कलयुग जो ना समझ है उनको तो छोड़ता ही नहीं, जब समझ वाले को भी परेशान करता रहता है तो दूसरों की तो बात ही कहां। जो ना समझ है इनको तो परेशानी खूब आती है बहुत। हम ना समझ रहे हैं, मनुष्य जन्म पाकर भी ना समझ रहे हैं, तो इसमें हमारा हित ही नहीं। बेहतर है कि सत्संग में ये समझ लाने के लिए हम कुछ कोशिश करें, नहीं तो सत्संग भी सामाजिक चर्चा हो या किसी और हेतु के लिए किया जाता है, तो सत्संग नहीं दुसंग कहलाता है। सत यानी सनातन सत्य, भगवान के बारे में, धर्म के बारे में, भक्ति के बारे में हमें जो सनातन सत्य जहां प्राप्त हो उसका ही संग करने को सत्संग कहते हैं, बाकी दूसरा असत्संग या दुसंग इसमें कोई भली बात नहीं। सत्संग की महिमा में क्या कहते हैं, भगवान का बल प्राप्त होता है। जब सत्संग सच्चा होता है वहां भगवान का ही बल प्राप्त होता है। भगवान का बल जब प्राप्त होता है तो हम सब कुछ समझ सकते हैं भगवान के बारे में, क्योंकि भगवान के पावर की जो हमें जब पहचान ही हो जाती है तो उससे बहुत सारी समस्याएं निकल जाती। जब भगवान ही मौजूद होते हैं, भगवान की शक्ति ही जहां मौजूद होती है, नहीं तो जब रामायण की कथा चलती है तो हनुमान जी कैसे वहां पहुंच जाते हैं। आपने सुना होगा कि जहां जहां रामायण की कथा होती है हनुमान जी पहुंच जाते हैं, तो वो सचमुच मान्यता ही होती है क्या, समझने की आवश्यकता है। कभी देखा है हनुमान जी को, रामायण की कथा चलती है तो हनुमान जी को देखा है वहां, लेकिन कहते हैं कि पहुंच जाते हैं, तो कैसे समझना चाहिए। जो कथा में दम हो, सत्य का परिचय हो, तब हनुमान जी हमेशा होंगे ही होंगे। कथा श्रवण करना भी सेवा होती है, लेकिन किस ढंग से श्रवण करें, सुने तो सेवा बने, कैसे सुने तो सेवा नहीं बनती है, ये सब जानने की आवश्यकता होती है। तो जब ऐसा सत्संग प्राप्त हो जिसमें हमें कुछ ताकत दम दिखाई दे, उसकी आवश्यकता है, वो हमारी जिंदगी को तार सकता है, भवसागर पार कर सकता है। ये कपिल देव स्वयं अपनी माता देवहूति को कहते हैं भागवत में, सताम प्रसंगा मम वीर्य संवीता। सत्संग के प्रसंग में मेरा बल की जानकारी होती है, उसमें मेरी ताकत की। भवंती रद करण रसायण कथा, जहां कथा में दम हो और सुनने वाले में भी दम हो, कथाकार में भी दम हो और सुनने वाले में भी दम हो। कथाकार आत्मानुभवी होना चाहिए, सिर्फ कथावाचक नहीं होना चाहिए। कथाकार और कथावाचक में अंतर है ना, जब सिर्फ पढ़ता है या तोते जैसा बोलता है वो वाचक कहलाता है, लेकिन जो आत्मानुभूति से बोलता है, भक्ति के बारे में सिखाता है, वही सच्ची कथा होती है। स्टोरी टेलर की आवश्यकता कहाँ है। वैसे तो हम अपनी दादी माँ बच्चों को स्टोरी कहती है ना, तो वो भी स्टोरी टेलर है। हमें स्टोरी टेलर की आवश्यकता है या कथा के पीछे दम की शक्ति की पहचान की आवश्यकता है, जो हमारा भवसागर पार कर। तो मान्यता का धर्म नहीं होना चाहिए, अकलमंदी का धर्म होना चाहिए। अंधश्रद्धा से हमें क्या फायदा। तो कपिल देव अपनी माता को कहते हैं कि सताम प्रसंगा मम वीर संबित भवंती रद करण रसायण कथा, जहां कथा में दम हो और सुनने वाले में भी दम हो, यानी कि सुनना सुनना में भी अंतर होता है। कोई एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देता है कि तूने सुना था, कि हाँ सुना, लेकिन बाद में नहीं कह के मैंने निकाल भी दिया है, वो नहीं पूछे आपको नहीं। हाँ मैंने सुना, हम सुनते ही ये बात चुन चुके कितने। हम गुजराती में कहावत है कि कथा सुनी सुनी फूटा कान, कथा सुन सुनकर के कान भी फूट जाते, फिर भी ना आयु ब्रह्म ज्ञान, फिर भी हमें कुछ पता नहीं। दूसरा भी कहना है, अरे भैंस के आगे भागवत महत्व करना, हम भैंस जैसे हैं, पशु जैसे हैं, ये भागवत की क्या असर होती है? तो कैसे सुनने की आवश्यकता कि भवंती रद करना रसायन करना। कोई अकलमंद है, पढ़ा लिखा है, ओ सुनना तो हम जानते हैं, लेकिन देखो तो ये बकवास तो नहीं करता है, तो सुनता है और खोपड़ी में सोचता है कि ये सही बोल रहा है, गलत बोल रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, ये क्या अर्थ है, उसका क्या अर्थ है, ये कुछ गुड़ अर्थ, तो अपने दिमाग में सोचता रहता है। वो भी सुनने का मना किया है, क्योंकि ऐसे सुनने से भी कोई फायदा नहीं है। कैसे सुनना चाहिए? भवंती रद करना रसायन कथा, कान और हृदय में संचार करें। जहां भगवान की कथा में जो रस है, नाम रस, नाम रस कान से लेना और हृदय में उतारना होता है। कान और कान से बाहर निकालना नहीं कहा है, कान और खोपड़ी में रखने को भी नहीं कहा है, हृदय में उतारो। भवंती रद करण रसायन कथा, तज्जोषणावम अपवर्ग वर्तमनी श्रद्धारति भक्त अनुक्रमश्यति। तब उसकी ये माया जाल में छुटकारा शुरू हो जाएगा और उसका मुक्ति का मार्ग खुला हो जाएगा। उसे अपवर्ग वर्तमनी कहते हैं, अपवर्ग। अब हिंदी जब पढ़ते हैं तो पहले अल्फाबेट्स पढ़ते हैं ना, तो अल्फाबेट में क्या आता है, क ख ग ग भ भ म, तो उसमें प भी आता है ना, तो प फ ब भ म, ये पवर्ग कहलाता है। इतने ही प फ ब भ म पांच अक्षर लेटर है, तो प फ ब भ म, प यानी परिश्रम, गधे जैसा परिश्रम करना, दिन रात मेहनत करो, कावा उगाओ थोड़े पैसे के लिए परिश्रम। अरे परिश्रम तो गधा भी करता है, धोबी का भार कितना उठाता है सिर्फ थोड़े ग्रास के लिए, नहीं। प यानी परिश्रम, उसका परिणाम क्या आता है, परिश्रम करते थक जाते हैं, एग्जॉस्ट हो जाते हैं, तो फेंड निकलता है। पता है घोड़े, आपको देखा होगा कहीं फिल्म में तो देखा होगा, घोड़ा जब बहुत दौड़ता है तो मुंह में से झाग निकलती है ना, फॉर्म इज कमिंग आउट फ्रॉम हिज माउथ, हैव यू सीन बच्चे लोग, व्हेन द हॉर्स रन वेरी फास्ट, ओ हैव यू सीन ए रेस, हॉर्स रेस वेर द हॉर्स इज वर्किंग वेरी हार्ड, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ वर्किंग हार्ड, that he becomes tired, exhausted, and the foam comes out from his mouth. Thak jata hai. Parisham, parisham ka parinam, thak jana. To pha hua. Lekin usse to koi phal ki apeksha hai, isi liye parisham kar raha hai na. Wo thakna bhi pasand karta hai, क्योंकि थोड़ा फल मिलेगा, लेकिन फल जैसे मिलता है तो वह बंधन में आ जाता है। फल पाने के लिए गधे जैसा परिश्रम करना और बंधन में फंसना, वो कोई अकलमंदी है नहीं। तो पावर गहरा बनता है, जो बंधन में फंसता है तो भयभीत होता है। बंधन का परिणाम क्या है, फियर। थोड़ी सी परेशानी में हमें फियर आ जाती है, और जब फीवर होता है तो डॉक्टर के पास, नहीं तो घबरा जाते हैं सभी, और यहां तभी नहीं मिलते, तो डॉक्टर है ही नहीं, सुबह जाना पड़ता है। कितनी परेशानी, देखो फियर। पिछले साल माताजी बीमार थी तो हरी नाम करती थी, डॉक्टर को मारो गोल, क्या दिखाई नहीं ना, अच्छी हो गई ना, बस तो और तो भय यानी भय, और जो भयभीत होता है गया काम से मृत्यु आती ही है, तो म आ गया, म यानी मृत्यु। तो प फ ब भ म ये यहां ही डटे रहने का प्लान है। लेकिन भगवान का कथा श्रवण कीर्तन इत्यादि जब सुनते हैं तो भगवान का बल प्राप्त होता है। यानी बल प्राप्ति का पहला परिणाम के ये पवर्ग मिट जाता है और अपवर्ग यानी कि मुक्ति का मार्ग खुला हो जाता है। पवर्ग नहीं अपवर्ग, अ यानी नहीं, जहां पवर्ग ही नहीं वो मुक्ति का मार्ग खुला हो जाता है। मुक्ति का मार्ग कैसे खुला, कैसे पते चलेगा कि खिड़की है देखने में मिलेगी कि ये मुक्ति यहां से शुरू होती है? नहीं नहीं, उसके लक्षण होते हैं, चिन्ह होते हैं, सिम्टम्स वगैरह। मुक्ति के मार्ग में क्या होता है पता है? भक्ति के लिए श्रद्धा पैदा होती है, भक्ति के लिए आकर्षण होता है और भक्ति स्वयं प्रकट होती है। तीन चीज देखो भगवान के बल में, श्रद्धा, आकर्षण और भक्ति, तीन अनुक्रम से पैदा होती है। तो ये भक्ति क्या चीज है? तो हरि बोल करा करते वो तो कि भक्ति है क्या? अरे सर्वप्रथम श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, तीन प्रकार की भक्ति सिर्फ भगवान के नाम में दी गई है, अन्य किसी देवताओं के नाम में नहीं दी गई है। शास्त्र मना करता है, वो तो कामनाओं की तृप्ति के लिए हम देवताओं का जाप करते हैं, लेकिन ये भक्ति नहीं कहलाती है। ये क्या बनियागिरी है भक्ति कि भगवान मेरी ये इच्छा पूर्ण, ओ देव शिव जी, ये गणेश जी, ओ आप मेरी ये इच्छा पूरी करो तो मैं आपका ये जाप करूंगा, ये कोई भक्ति है या बनियागिरी है? व्यापारी धंधा, मैं इतना दान दूंगा इतना मुझे दे दो वापस, भक्ति कोई व्यापार नहीं होता। कोई कोई नहीं, भक्ति तो प्रेम के लिए, प्रेम के लिए क्या व्यापार की आवश्यकता है क्या? प्रेम में तो न्योछावर करना पड़ता है, सेक्रीफाइस करना पड़ता है। जो पति पत्नी के लिए सेक्रीफाइस करे या पत्नी पति के लिए सेक्रीफाइस, तभी तो प्रेम टिकता है, नहीं तो चलो मारो गोली दूसरा ढूंढ लेंगे पार्टनर, दूसरा पार्टनर ढूंढ लेंगे। ये तो कोई कोई प्रेम है नहीं। तो कहने का मतलब है हमें भगवान के प्रति यदि प्रेम की चाहना हो, क्योंकि हमारा ये जीवन दाता है। जीवन क्या चीज है? जीव से जीव आता है, ये परम जीव है भगवान, और उसके अंश है हम, तो क्या कोई नाता तो होगा ना, संबंध होगा ना? जिनके अंश है तो क्या अंश के साथ कोई अंश का संबंध नहीं है? है, संबंध में व्यवहार है और व्यवहार के अंत में प्रेम की प्राप्ति है। तो जो यही एकमात्र भगवान की प्रीति का जो हेतु होता है वो सारे अन्य हेतुओं से सबसे ऊंचा हेतु कहलाता है। सबसे ऊंची प्रेम सगाई कहते हैं, सुना है ना भजन, प्रेम सगाई सबसे ऊंची होती है। देवताओं के साथ प्रेम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम तो अपनी कामनाओं से देवता के पास जाते हैं, यानी कि बनियागिरी, वो तो देवताओं के तो कर्मकांड में हमें ये करना पड़ता है, चलो इतना चढ़ावा दो तो उतना होगा, दाम देने पड़ते हैं। प्रेम के लिए कोई दाम नहीं होता है, लेकिन प्रेम अमूल्य होने के कारण सब कुछ न्योछावर करना होता है। इसमें शरणागति है, शरणागति में आपके पास यदि हो न हो सब कुछ दे देना होता है, न हो तो खुद को तो देना होता है। उसे समर्पण कहते हैं, शरणागति कहते हैं। शरणागति भक्ति का अंतिम लक्ष्य होता है, शरणागति अंतिम लक्ष्य होता है। तो शरणागति पाने के लिए सर्वप्रथम तीन चीज बताई है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम। भगवान कौन है उसको जानकर भगवान का ही नाम लेना, जो भगवान नहीं है वो देवता भगवान के अंश मात्र होते हैं, जो भौतिक अवस्था में सारा ये संचालन करने के लिए यहाँ विराजमान है। पहले तो देवता लोग आते थे, जब मनुष्य कुछ यज्ञ तप इत्यादि करते थे तो उनका भाग लेने आते थे। पहले देवता इस भूमि पर आते थे, अभी नहीं आते क्योंकि कलयुग है, लोग यज्ञ करना भी जानते नहीं। देवताओं को तो उनका भाग देना होता है क्योंकि वो संचालक है, टैक्स देना पड़ता है ना गवर्नमेंट को, तो वो भी गवर्नमेंट में, भगवान की गवर्नमेंट में बहुत सारे सेक्रेटरी थे हैं, लेकिन अभी नहीं आते क्योंकि कलयुग में तो ये मनुष्यों का उद्धार करने के लिए कोई इन लोगों की आवश्यकता नहीं बताई। मनुष्यों का उद्धार करने के लिए देवताओं की कोई सी भी आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो परेशान हो गए देवता लोग। हम अपनी कामनाओं से बुद्धि गवा कर देवताओं के पीछे जाते हैं, देवता तो वैसे इनका काम करते रहते हैं पर फिर भी हमें इन पर भरोसा नहीं ना, इसलिए उसके पीछे पड़ते हैं। जब तक कुछ देते नहीं तब तक पीछे पड़े रहते हैं, और जब देते हैं तो कहते हैं कि अब तू मेरा गुलाम, देते ही रह नहीं तो तेरे पर श्रद्धा उठ जाएगी। जब तक हम देते हमें मिलता नहीं तब देवता पर श्रद्धा नहीं रहती। लेकिन भक्ति ऐसा धंधा नहीं है, बनियागिरी नहीं है। भक्ति में तो सर्वात्मनाय शरणम शरण्यम, सर्वात्मना भाव से भगवान की शरणागति ले। इसीलिए भगवान क्योंकि वेदों में ऐसा कोई उपाय नहीं बताया है जो यज्ञ दान और तप की क्रिया द्वारा मनुष्य अपनी शुद्धि पाकर भगवान के पास जा सकता है, ऐसी तो कोई, क्योंकि लायकात है ही नहीं। हमें तो इतना भी कहा है कि ये सारा कलयुग है ना, दोष की निधि है, दोष यानी सब गड़बड़ी कलयुग में। जहां देखो कली ने अपना पांव डाला है, जहां भी देखो, नहीं तो यहां कावा उगता क्यों। जब कली है ना, कली तमोगुण द्वारा अपना संचालन कर रहा है, इसलिए जो कावा पीता है वो तमोगुण में नशे में रहता है। जो भगवान का प्रेम के लिए जो भक्ति की आवश्यकता समझता है तो कावा भी छोड़ देता है। सही बात है, क्योंकि कीमत किसकी है, कावा की या भगवान की भक्ति की। जब भगवान की कीमत समझता है तो उसके दाम क्या है, सब कुछ समर्पण, सब कुछ समर्पण। ठीक है वो बेचारा क्या करे। तो कहने का मतलब है भगवान का बल महसूस होना चाहिए। तो ये कली तो दोष की निधि है, लेकिन इसमें एक ही महान गुण है, और वो भी महान गुण कीर्तनाद एव कृष्णस्य, एव मीन्स एक ही मात्र, किसका, कृष्ण का, कीर्तन ही एकमात्र, दूसरे का नहीं कहा है। शिव जी का कीर्तन नहीं कहा है, न गणपति का कहा है, न हनुमान जी का कहा है, न किसी ने नहीं कहा है। कीर्तनाद एव कृष्णस्य मुक्त संगम परम व्रजे, सिर्फ भगवान श्री कृष्ण के कीर्तन द्वारा ही मुक्ति कीर्तन करना तो भक्ति का अंग है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, सुनना भक्ति कहलाती है, क्योंकि भगवान का बल प्राप्त होता है। कैसे सुनना, तो वो तो बता दिया है, जो सुना ना कर दिया और महाराज जी तो बोल के चले गए, लेकिन तूने सुना भी कहा। जो सुनता है इसको फायदा होता है, क्योंकि सुनने से भक्ति का बल अवश्य प्राप्त होगा। ये बल महसूस करना है, ये कोई खरीदा थोड़ा जाता है, उसकी कीमत होती है, पैसे देकर कोई बल प्राप्त कर सकता है। ये पोप आय कैसे वो बल प्राप्त करता है, हाउ डज पोप आय, यू सो द कार्टून ऑफ पोप आय, कार्टून देखते हैं यहाँ कि टीवी ही नहीं चलता है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, सिर्फ टीवी है। वहां अमेरिका में इतने पोपाय के कार्टून चलते हैं, तो जब जब वो मुश्किल में आ जाता है ना, तो वो पालक की भाजी का डिब्बा मुंह में डाल देता है तो ताकत आ जाती है उसे और सब कुछ हासिल कर देता है। अरे भैया, ये भगवान का बल ऐसा पोपाय जैसा नहीं होता। भगवान के बल की प्राप्ति में इनके लक्षण दिए गए हैं, श्रद्धा रति और भक्ति अनुक्रम से पैदा होती है। तो भगवान के कीर्तन, नाम कीर्तन, यानी कि कृष्ण भगवान के ही एकमात्र नाम कीर्तन से ये बल प्राप्त होगा, यूं कहा। अस्ति एको महद्गुण कलौ दोष निधे राजन, अस्ति एको महद्गुण, सारे दोषों में एक ही महान गुण है, नहीं तो सब दोष ही दोष समझो सारे कलयुग में, और वो भी कृष्ण भगवान के कीर्तन। तो कीर्तनाद एव कृष्णस्य मुक्त संगम परम व्रजेत, मुक्त संगम ये पवर्ग का संग नहीं, मुक्त संगम और परम व्रजेत, परम यानी सर्वश्रेष्ठ स्थान में भगवान के धाम में हम व्रजित यानी प्रयाण करते हैं, चले जाते हैं। ये दुनिया को छोड़ने की ताकत होनी चाहिए, हम दुनिया छोड़ नहीं सकते, ये तो कमजोरियां हैं, कि जो भगवान का कीर्तन नहीं करता ना उसमें कमजोरियां ही कमजोरियां दिखाई देगी। तो गुण तो एक भगवान के नाम के गुण में, भगवान के कृष्ण भगवान के कीर्तन में ही तो गुण है, और वो बल प्राप्ति हमें मिलती है। तो भगवान भगवत गीता में कहते हैं कि सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रता नमस्यन्तश्च माम भक्त्या नित्य युक्ता उपासते। जब भक्त लोग हैं जो मेरा कीर्तन करते हैं तो सततम करते हैं, सततम यानी कंटिन्यूअसली बिना रोक टोक। आप तो कहोगे कि ओ महाराज जी, आप तो सतत कीर्तन करने को कहते हैं तो डालो कैसे पकेगा, दावा कैसे कौन, और खाएंगे कैसे, आपको भी भोग लगाने के लिए तो कुछ तो चाहिए हमारी पास, हम कीर्तन करते रहे नहीं। कावा को मारो गाली, ये डालो तो ठीक है, वो तामसिक थोड़ा है, डालो तामसिक नहीं ना, तो डालो पकाओ, कावो के मारो गले, दावा के भी अच्छे 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 दाम आते हैं आजकल तो। वो भगवान की प्रीति के लिए यदि उगाओ, भगवान का नाम कीर्तन डालो बनाओ पकाने के लिए मिल जाएगा। कल्टीवेट, यू कैन अर्न एंड यूज दैट मनी फॉर ग्लोरिफिकेशन ऑफ द होली नेम, भगवान के नाम का गुणगान गाते गाते डालो पका सकते हैं, कावा नहीं पका सकते। खेत में कावा भगवान की प्रीति के लिए नहीं, क्योंकि वो तो तामसिक गुण पैदा करता है, तामस से हमें इग्नोरेंस ही आती है, समझ में आता ही नहीं। तो हमें ये व्यवसाय मुड़ना चाहिए, खाना तो पड़ेगा, भगवान को भोग तो लगाना पड़ेगा। डालू का तो लगा सकते हैं, कावा का नहीं लगा सकते हैं, तो कारण की आवश्यकता भी नहीं समझते। ये बुद्धि का विकास करने के लिए बताया है कि हम ना समझ न रहे। भगवान के बल की प्राप्ति इसी जन्म में हो सकती है, देवताओं के जन्म में भी भगवत प्राप्ति बहुत मुश्किल हो जाती है, क्योंकि ये लोग काफी पॉलिटिक्स खेलते हैं देवता लोग। सुर और असुर, राक्षसों के साथ काफी पॉलिटिक्स देवताओं को खेलनी पड़ती है, नहीं तो ये असुर लोग आकर उनका राज्य हड़प कर लेते हैं, तो मैनेजमेंट में दखलगिरी करते हैं, तो ये झगड़ा तो चालू ही होता है वहां। लेकिन भक्ति में कोई मैनेजमेंट की क्या आवश्यकता है, न तो देवताओं की आवश्यकता है, भक्ति में तो सिर्फ भगवान की आवश्यकता होती है, और भगवान भी अपने नाम द्वारा ही हमें मिलते हैं। तो नाम जब मौजूद है और नाम ही एकमात्र महान गुण है, तो सततम कीर्तन तो बनाना चाहिए उसे। हम जो कुछ करें, जो कुछ खाएं, जो कुछ यज्ञ में आहुति दे, जो कुछ दान करे, जो कुछ तप करे, वो भगवान श्री कृष्ण को अर्पित करते करते हम यदि करते रहे तो वो भी कीर्तन बन जाता है। कीर्ति गान, भगवान की कीर्ति करना हर एक जीव का फर्ज है, तो कीर्ति बढ़े ऐसा हमारा कर्तव्य हो, हमारी कीर्ति बढ़े ऐसा नहीं। भगवान की कीर्ति कैसे बढ़े, भगवान की कीर्ति का गान करते हम यदि कोई भी व्यवहार ऐसा करते हैं जो भगवान को अनुकूल हो, तो वो क्या कीर्तन नहीं बन सकता। कीर्ति पे से तो कीर्तन आया है, जिस कीर्तन में भगवान के कीर्ति का ख्याल भी नहीं आता वो कीर्तन नहीं कहलाता। सही। और जिनका नाम भगवान का नाम नहीं है तो जो नाम भगवान से हम स्वतंत्र मानते हैं, लोग झगड़ा करते हैं, शिव जी ही महान है, कृष्ण नहीं है, हम तो शिव जी का ही गान करेंगे, कृष्ण का नहीं करेंगे। अरे ना समझ मत रहो, शिव जी कौन है, कृष्ण कौन है, सब जानना चाहिए। एक में से अनेक हुआ तो एक के पीछे पड़ना होता है, अनेक के पीछे पड़कर हम कहीं के नहीं रहते, है ना। तो शास्त्र ने भगवान श्री कृष्ण को एक मूल उद्गम कहा है, जिसमें से अनेक का विस्तार होता है, एको बहुश्याम। वेद में ये कहा है कि एक में से अनेक हुए हैं, अनेक एक नहीं कहलाता, वो तो उनके विस्तार कहलाते हैं, और विस्तार में भगवत्ता दिखाई देगी लेकिन भगवान नहीं दिखाई देंगे। जबकि कृष्ण में 64 कला के पूर्ण पुरुषोत्तम में सारी भगवत्ता और उनका व्यक्तित्व भी दिखाई देता है, जो है वो समझो। जरा शिव जी भगवान विष्णु का रूपांतर, ये जब भौतिक दुनिया बनी ने तो गुणावतार में आते हैं। जैसे विष्णु भगवान दूध जैसे हैं, लेकिन दूध को रखो तो उसमें अम्लता होने के कारण दही बन जाता है। जो काम दूध करता है वो दही नहीं करेगा, जो दही करता है दूध नहीं करेगा, लेकिन दही तो दूध में से पैदा हुआ है ना। दही में से दूध बन सकता है। तो उसी तरह शिव जी भगवान का रूपांतर है किसी मूल हेतु के लिए। इसमें ये दुनिया जब बनी तो दुनिया का नाश कौन करेंगे, तमोगुण का कौन अवतार बनेगा। तमोगुण के अवतार शिव जी कहलाते हैं, रजोगुण के अवतार ब्रह्मा कहलाते हैं, लेकिन सत्वगुण स्वयं अपने हाथ में ले लेते हैं। यानी कि सृष्टि का कर्ता, भर्ता,
और हरता तीनों चीज भगवान विष्णु है, लेकिन अपना रूपांतर करके आते हैं। ये शास्त्र कहता है शिव जी की महत्ता है लेकिन इनके स्थान में है। वो सारी भौतिक दुनिया के पिता बनकर आए हैं, भौतिक दुनिया के, और भौतिक शरीर जो हमें मिला है उनके द्वारा मिला है, आदि पिता कहलाते हैं। लेकिन वो स्वयं देखो कैसे है, रहने को घर है शिव जी को है? नहीं है ना, उनके घर में सब अलग अलग मति वाले हैं। यदि ये दुनिया में होते हैं, अपनी दुनिया में होते तो इनके परिवार में बहुत झगड़ा होता, लेकिन शिव जी के परिवार में कभी झगड़ा सुना है? देखो एक दूसरे के दुश्मन हैं, ऐसे सब परिवार है इनका। कभी कभी पार्वती भी शिव जी को मानती नहीं, पार्वती के पास शेर है, तो शिव जी के पास नंदी है, शेर नंदी को मारना चाहता है, गणेश के पास चूहा है तो शिव जी के पास नाग है, एक दूसरे के दुश्मन है। देखो शिव जी के पास नाग है तो कार्तिक के पास मोर है, तो वो भी एक दूसरे के दुश्मन है। ये क्या तमाशा, और स्वयं कार्तिकेय और गणेश के स्वभाव में अंतर है आसमान जमीन का। एक रजोगुण कामदेव द्वारा पैदा हुआ है और गणेश सत्वगुण से है? तो कहने का मतलब है इतना विरोध होते भी इनके परिवार में कोई झगड़ा नहीं है, हमारे परिवार में हम एक दूसरे से विरोध स्वभाव वाले हैं। पत्नी पति का मानती नहीं, बेटे बाप का मानता नहीं, क्या दंगल मचा रहा है? कहते कि हर एक घर में जो बर्तन होते हैं ना हमेशा खखड़ते रहते हैं, यानी कि वो घर घर नहीं कहलाता है जहां बर्तन खखड़ते नहीं। शिव जी के घर में कभी बर्तन खखड़ते नहीं, उनके न तो रहने का घर है, न तो इनके पास बर्तन होते हैं, न कुछ नहीं। देखो कितने निर्लप्त हैं, वो जानते हैं, और हमेशा माला गुमती रहते हैं इनके हाथ में, है ना? तो शिव जी के बारे में ना समझ नहीं रहना चाहिए। महादेव है, सामान्य नहीं है, कोई इनका ऐसा अनुकरण नहीं कर सकता, लेकिन वो समझाते हैं ऐसा करना चाहिए। वो जैसे माला जपते हैं, हमें माला जपने को कहते हैं, तो हम उनकी माला जपते हैं, शिव जी शिव जी शिव जी नहीं, शिव जी स्वयं संकर्षण का जप करते हैं, इनका मूल रूप का संकर्षण का परावर्तन हुआ है शंकर में। तो हमें ये सीखना चाहिए कि शिव जी भगवान की अपने मूल रूप की माला जपते हैं, तो हमें अपने मूल रूप के साथ जिसका संबंध है इनकी माला जपनी चाहिए, वो तो भगवान स्वयं है। इसलिए हरे कृष्णा महामंत्र का जप करना होता है, और हर एक जीवन का अपना कार्य संकीर्तन बने, संकीर्तन बने, भगवान की कीर्ति बढ़े, ऐसा हमारा जीवन बनना चाहिए। तो जीवन का हरेक हिस्सा हमारा हरेक कार्य कीर्तन बन सकता है, ये कला है। तो भगवान क्या कहते हैं कि सततम कीर्तयन्तो माम, सततम हमें 24 घंटे का जीवन मेरा कीर्तन के रूप में होना चाहिए, और यतंतश्च दृढ़व्रता, इस दिशा में दृढ़ व्रत रखकर प्रयत्न करते हैं। नमस्यन्तश्च माम भक्त्या, वो हमेशा मुझे नमस्कार करते हैं, मेरी पूजा करते हैं, जिसमें सारे देवताओं की पूजा आ जाती है, क्योंकि मैं ही सबका उद्गम हूं। भगवान कहते हैं भगवान तो एक होते हैं, अनेक होते हैं, एक ही होता है, लेकिन एक वो कृष्ण, कृष्ण में से नहीं तो कृष्ण अपनी पूर्ण पुरुषोत्तम रूप पूर्णता का परिचय नहीं करवाते यदि अपूर्ण होते तो। सारी दुनिया में किसी को पता नहीं कि भगवान कौन है। अपने शास्त्रों में तो लिखा है, फिर भी हम नहीं परवाह करते और अंदर अंदर झगड़ते रहते हैं। मेरे लिए तो साईं बाबा ही भगवान है, क्योंकि देखो ये अंगूठी निकालते हैं, ये वो करते हैं, वो करते हैं। कोई कहता है कि मेरे लिए तो हनुमान भगवान है, कोई कहता है कि अरे गणेश भगवान है। ऐसा नहीं है, सब भगवान के अंश होते हैं, भगवान नहीं हो सकते। अंश और अंशी में बहुत भेद है। पूर्ण से पूर्ण बनते हैं, लेकिन वो अंदर के अंदर रहते हैं, बाहर कभी निकलते नहीं। वेद में पूर्णता का परिचय ये कहा है, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। संस्कृत में तो श्लोक तो कई लोग जानते होंगे ना, आप लोग हैं, पंडित जी भी होंगे यहाँ, कुछ तो बोलते होंगे ना, कुछ क्रियाकांड कराते हैं तब संस्कृत बोलते हैं ना वो, तो ये श्लोक भी इनको पता होगा। पूछना, ये पूर्णता का परिचय कौन करवाता है? शून्य नहीं कर सकता। भगवान श्री कृष्ण ने पूर्णता का परिचय करवाया है, रामचंद्र जी मर्यादा लेकर आ गए और हमें मना कर दिया, वो भी भगवान का ही रूप, लेकिन पूर्णता का परिचय थोड़े करवाते हैं, आदर्श सिखाते हैं हमें, हमें अपनी मर्यादा में रहकर काम करना चाहिए। लेकिन मनुष्य मर्यादा छोड़कर क्या करता है, किसी को भी भगवान बना सकता है। अरे भगवान कभी बनता है या होता ही है? इतने पागल, नहीं तो मनुष्य कितने धर्म बना चुका है, कोई कहते कि क्रिश्चियन धर्म, कोई कहते हिंदू धर्म, कोई कहते मुस्लिम धर्म, कोई कहते बुद्ध धर्म, सब प्रकार के धर्म। भगवान कृष्ण क्या कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, सारे धर्मों को छोड़कर मेरे अकेले की शरण में। किसी ने नहीं कहा, क्योंकि है ही नहीं, पूर्ण परिचय कराने वाले है ही नहीं, तो कैसे कह पाएंगे। इसलिए दम कृष्ण भगवान के चरित्र में है, उनको ठीक ढंग से समझना, इनके नाम जपना ठीक ढंग से, तब ये सब परिचय होता है, ये बल प्राप्त करना चाहिए। ये बल प्राप्त करो, जीवन अवश्य सुधर जाए। दूसरों का कभी अपमान नहीं करना चाहिए, देवताओं का कभी अपमान हो ही नहीं सकता। जो देवताओं का अपमान करते हैं वो भी नासमझ है। देवताओं कौन है, इनकी व्यवस्था जाननी चाहिए। उनमें से ये देवताओं तो हमें भगवान की भक्ति में आगे बढ़ा सकते हैं, भगवान की भक्ति में, स्वयं के नहीं। वो बनियागिरी से थक जाते हैं। शिवजी स्वयं इनके पीछे पड़ने वालों को क्या है, जा ले जा जान छोड़ दे देता हूं। इतने दयालु होते हैं कि वो अपने भजन में भंग नहीं कर देना चाहते, तो इसलिए बहुत आसानी से जा, तेरी इच्छा पूरी कर, हो जाएगी, जा जा निकल यहां से। लेकिन हम पीछे ही पड़ते रहते हैं। भगवान का नाम आशुतोष, शिव जी का नाम आशुतोष, लेकिन वो जानते हैं कि भगवान कौन है। वो पार्वती को पद्म पुराण में कहकर बताते हैं, पार्वती सुन, आराधना नाम ही सर्वेशाम विष्णु आराधनम परम। यदि आराधना ही करनी है तो विष्णु की आराधना सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन उससे भी ऊपर तस्मात परंतरम देवी तडियानाम समर्चनाम, उससे भी परतर आराधना यदि करनी है तो विष्णु भगवान के भक्तों की करो। स्वयं भक्त है, लेकिन इनके साथ दूसरे और भी भक्त हैं। पता है 12 सर्वश्रेष्ठ भक्तों की कहानी श्रीमद् भागवत में, स्वयंभू नारद शंभू स्वयंभू नारद शंभू कुमार कपिलो मनु प्रहलाद जनक भीष्म बलि वैयासिकी वयम। ये भक्ति के लिए 12 लोगों की ऑथोरिटी प्राप्त करो, वो प्रामाणिक है, वो भगवान की भक्ति सिखाएंगे। उसमें ब्रह्मा जी स्वयंभू नारद मुनि शंकर भगवान स्वयं भगवान की भक्ति सिखाएंगे, कुमार 4 कुमार है, सनत सनातन सनंदन और सनक कुमार, तो 4 तो 4 कुमार भक्ति सिखाएंगे। कपिल देव देवहूति पुत्र जब अभी बात की भक्ति का बल भगवान के सत्संग में यदि प्राप्त करना हो तो अच्छी तरह से सुनने का प्रयत्न जब होता है तभी ओ कान और हृदय में ही सुनना वो संचार करते हैं। तो कुमार कपिल मनु भगवान मनवंतर अवतार स्वयंभू मनु 14 मनु ब्रह्मा जी के 12 घंटे में होते हैं। ये सभी भगवान के अवतार माने जाते हैं, भगवान नहीं माने भगवान के अवतार माने जाते हैं। तो ये भी भगवान की भक्ति मनु संहिता इत्यादि आप देखोगे कि बहुत सारी उन्होंने मनुष्य के लिए कानून बनाए हैं भगवान की प्राप्ति में, नहीं तो मनुष्य सब चीजों का उल्लंघन करता आया है अपनी मनमानी करते। तो स्वयंभू नारद शंभू कुमार कपिलो मनु प्रहलाद की भक्ति कितनी श्रेष्ठ है, कहानी तो सबको पता होगा है ना, कोई अनजान है बच्चों? अरे बोलो, प्रहलाद की बातें पता है? यू नो द स्टोरी ऑफ प्रहलाद महाराज? यस, रेज योर हैंड, हु डजंट नो? अरे लड़कियों से भी तुम लोग बुरे हो, शर्म आती है। खेलने जाना है तो अभी चले जाएंगे, फिल्म देखना है तो अभी चले जाएंगे। यहां फिल्म बताते हैं क्या? जो दे है थिएटर और सम काइंड ऑफ एंटरटेनमेंट, और वहां जाना पड़ता है क्या? नहीं तो टीवी में वीडियो, सीडी ला कर देख लेंगे, वो देखने में तरह अरे अकलमंद बनो, प्रहलाद की कहानी तो जानते होंगे ना? बस तो फिर शर्माते हैं, हम पूछते हैं तो चूड़िया पहननी है क्या? अभी ठीक हो गया। तो प्रहलाद महाराज भक्ति सिखाते हैं, जनक महाराज सीता देवी के पिताजी, देखो उनकी भक्ति, भीष्म पितामह, महाभारत की सीरीज देखी है ना, भीष्म पितामह फाइटिंग करते हैं ना, अरे फाइटिंग करते करते भक्ति करते हैं, देखो भगवान के भक्त थे। अर्जुन को तीर छोड़ते, अरे भगवान को कितने तीर लगते थे इनके लेकिन ये तो इनकी भक्ति कही जाती है। तो भक्ति समझना, ये भीष्म पितामह सिखाते हैं, भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा अचल रखने के लिए भगवान ने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ी थी ना, यानी भगवान उसकी प्रतिज्ञा पर बहुत खुश हुए। तो भीष्म पितामह भगवान को पूर्ण रूप से जानते थे इसलिए भक्ति सिखा सकते हैं। बलि महाराज, हा? बलि महाराज ने अपना सब कुछ दे दिया था ना वामन देव को, तीन कदम भूमि देखने स्वार्पण। और यमराज यमराज का नाम सुनकर पापी लोग वहीं पेशाब कर लेते हैं, ही छटक जाता है, इतना घबराते हैं। यमराज का नाम सुनकर सब टट्टी छूट जाती है, भयानक होते हैं। ना ना भक्ति सिखाने वाले हैं, एक नचिकेता करके छोटा सा लड़का था ब्राह्मण का, उनके पिताजी दालक मुनि, दालक क्या नाम है भूल गया मैं, तो इनके पिताजी के पास बहुत गैया थी और दान करते थे गैया का। ब्राह्मण के पास यदि ज्यादा इकट्ठा हो जाता तो दूसरों को दे देते, दानी होते हैं ब्राह्मण, ज्ञान का तो दान करते हैं और चीजों का भी दान करते थे। तो उद्दालक मुनि एक बार फिर से पता नहीं नाम भूल गया मैं, तो ये मुनि दान करते थे गैयाओं का। तो छोटा लड़का आया कहता कि पिताजी आप क्या कर रहे हो, तो कि दान कर रहा हूं। लड़के के दिमाग में गया नहीं कि ये क्या चीज है दान। उसने देखा कि तो गैया यहां से वहां जाती है, फिर से पूछा पिताजी आप क्या कर रहे हो, तो देखता नहीं मैं दान कर रहा हूं गैया का। फिर भी लड़के के दिमाग में गया नहीं, उसने समझा कि पिताजी अपने पास जो जो चीज है वो देते हैं किसी को। तो उसने तीसरी बार कहा पिताजी आप अपनी चीज दूसरों को देते हैं तो मुझे किसको दोगे। तो पिताजी का क्रोध तीसरी बार ऐसा पूछा ना तो आसमान पे पहुंच गया, जा यमराज को दे देता हूं तुझे, बेटा निर्दोष है, उसे न तो पता है न कुछ नहीं, लेकिन इसकी ब्राह्मण है यानी कि इसकी जीव की जो भक्ति के बारे में जिज्ञासा है कि ये क्या है, यज्ञ दान तप क्रिया क्या है। उसके पिताजी बहुत दानेश्वरी होने का अपना गर्व समझते थे तो असली हेतु भूल गए, ये लड़का क्या कह रहा है। तो उसने कह दिया जा तुझे यमराज को दान दे देता हूं, हटियो यहां से। कभी कभी करते हैं माँ भी बच्चे जब परेशान करते हैं, हट मर यहां से, यानी कि निकल तू यहां से, कहने का मतलब कह देती है मुंह से निकल जाता है कि मर यहां से, गेट आउट फ्रॉम हियर आजकल। सो तो पिताजी ने कह दिया जा तुझे यमराज को दान दे देता हूं। ठीक है नचिकेता चलो यमराज के पास चलो, तो सचमुच वो चलने लगा दक्षिण दिशा में जहां यमराज का आवास होता है। नचिकेता चला गया, इसको पिताजी को अफसोस होने लगा कि अरे मैं मूर्ख, मैंने मेरे बेटे को कहा जा मर जा ऐसा कहा, तो पछताने लगे लेकिन जाए कहां। अब नचिकेता यमराज के दरबार में आ गया, तो यमदूत पूछने लगे अरे यहां खेलने के लिए यहां कहां पहुंच गया, तेरा तो नाम लिस्ट में है ही नहीं। यमदूत पहले जानते हैं मरने वाला कौन है, तो इनके पास सारा लिस्ट होता है, इसको ले आते हैं स्वयं, ये तो खुद चला है। और उन्होंने पूछा कि लड़का तू कौन है, क्या काम है यहाँ, तो मैं यमराज को मिलने आता हूँ, मेरे पिताजी ने मुझे दान दे दिया है, चलो ले चलो मुझे यमराज के पास। तो वो लोग हैरान हो गए, कह रहा था नाम ही लिस्ट में नहीं है। तो यमदूत गए यमराज के पास, कि ताज्जुब की बात है बिना बुलाए एक लड़का चला आ रहा है और आपको मिलना चाहता है। तो यमराज आश्चर्य में आ रहे कि वाह देखो। तो देखा ये छोटा ब्राह्मण बालक तेजस्वी है, तो उसने कहा बोल बेटा मैं क्या सेवा करूं तेरी। यमराज कहते हैं मैं क्या सेवा करूं, तो कहते कि मेरे पिताजी ने मुझे आपको दान में दे दिया इसलिए मैं आपका हो गया अभी। तो नहीं अवश्य तेरी जो कोई जिज्ञासा हो तो मैं जवाब दे दू। तो नचिकेता ने पूछा मैं कौन हूं, मेरा मूल स्वरूप क्या है, और मेरे जीवन का रहस्य क्या है, मेरे जीवन का रहस्य क्या है, और मेरा निरंतर कर्तव्य क्या है। ये तीन चीज इसने तो यमराज ने कहा कि हर एक जीव भगवान का अंश है, तो भगवान का बेटा है, ये शरीर नहीं। और हाँ तेरे जीवन का रहस्य ये है कि किसी संयोग से हम लोग ने अलग अलग शरीर प्राप्त किए और हमारी इच्छा पूर्ण करने के लिए ये शरीर प्राप्ति, लेकिन ये शरीर भी तो उसका उद्देश्य हमें हम जो सचमुच भूल गए हैं उसको पुनः प्राप्त करना है, ये उद्देश्य। गलती से हम शरीर में आए हैं लेकिन शरीर ही माध्यम ऐसा बनता है कि जो हमारी गलती को सही ढंग से समझ हम कौन है वो बता सकता है। यदि हमें गर्मी का भान नहीं है तो ठंडी का भी भान नहीं हो सकता है। हमें यदि गर्मी का भान नहीं है, गर्मी के बारे में कुछ पता नहीं तो ठंडी के बारे में भी कुछ नहीं पता हो सकता। यदि हम भौतिक नहीं है तो हमें आध्यात्मिकता की भी कोई आवश्यकता नहीं, सही ना। लेकिन है हम विरोधी तो एक तत्व जानकर हम दूसरे तत्वों को भी जान सकते हैं। पता चला आपको कुछ बोलते नहीं आप, दोबारा समझाओ। ये दुनिया सारी एक दूसरे से विरोधी तत्व वाली है, कोई ऊंचा है तो दूसरा नीचा होगा, कोई मोटा पट्टा है तो कोई पतला दुबला है, सही ना। ठंडी गर्मी तो ये सब एक दूसरे के विरोधी तत्व है, लेकिन यदि एक की आपको पहचान हो तो दूसरे की भी आपको तुरंत पहचान हो जाए। जैसे दुख है ना, तो दुख के पीछे सुख की भावना हमेशा क्यों रहती है, जो दुख नहीं है वो सुख कहलाता, इसीलिए। तो सुख और दुख, हैप्पीनेस एंड डिस्ट्रेस, बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री टू इच अदर, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। एक का अभाव दूसरे का नाम है। एक का अभाव दूसरे का नाम पड़ता है। जो दुख का अभाव है उसे सुख कहते हैं, सही है। तो इस ढंग से हम देखें तो जब हम भौतिक हैं यानी कि ये पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश का ही ये शरीर का लौंदा हम अपने आप को समझते हैं तो लेकिन ये इतनी मर्यादा में होते हैं कि हमें परेशानी इतनी आती है कि हम कुछ और हैं उसकी भावना कराती है, नहीं तो हम हमेश के लिए सनातन की भावना क्यों करते हैं। हम जानते हैं ये शरीर खत्म हो रहा है लेकिन हम इसी शरीर में ही सनातन भावना रखते आए हैं। युधिष्ठिर महाराज को एक प्रश्न पूछा गया था कि ये दुनिया में सबसे आश्चर्यजनक चीज क्या है, तो उन्होंने जवाब दिया कि दिन होते सब लोग स्मशान की ओर जा रहे हैं यानी कि मर रहे हैं, लेकिन जो उनको ले जा रहे हैं वो कभी सोचते नहीं कि मुझे भी एक समय ये लोग उठा के ऐसे ही ले जाएंगे। समझ में आया? आश्चर्यजनक चीज क्या है कि लोग अपने आप को स्थावरम इच्छति, शेषम स्थावरम इच्छति, जो बचे हैं अभी मरे नहीं है, जो बचे हैं वो लोग हमेशा यही जिंदगी में यही शरीर में हमेश के लिए प्लान बनाते आए, उसका भी ये हाल होगा उसकी कल्पना नहीं होती, उसको उसके लिए तैयारी नहीं करते। वो तो जब डॉक्टर कह देता है कि ये रुकने वाला नहीं है ये जाएगा ही, तब कुछ प्रयत्न करने के लिए यदि कोशिश करे तो जब भगवान को जानता नहीं, भगवान का भजन नहीं करता तो उसकी याद भी नहीं रहेगी। आप जोर शोर से कहा करो कि अब भगवान को याद कर, भगवान को, अरे भगवान कौन है पता नहीं तो याद भी कैसे करें नहीं ना, किसको याद करें, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कोई कहता है कि साईं बाबा का नाम लेना उद्धार कर लेगा, अरे क्या बात है, ऐसे होता है कभी? भगवान को जन्म मृत्यु होता नहीं और भगवान की अंश आत्मा को जन्म मृत्यु होता नहीं, तो जो आत्मा के स्वभाव को नहीं जानता, भगवान के स्वभाव को नहीं जानता, तो वो कैसे उद्धार कर सकता है? ऐसी मान्यता से क्या फायदा है? यदि भगवान के सामने मृत्यु होती ही नहीं, इसलिए उसको हॉस्पिटल करने की तो आवश्यकता होती ही नहीं, लेकिन ये तो हॉस्पिटल बनाते हैं। भगवान होते हुए हॉस्पिटल की आवश्यकता होती है क्या? सबके उद्धार कर लेते हैं। इनका मंदिर टकाने के लिए वो इंसेंस बिजनेस करते, अरे भगवान है तो बिजनेस करने की आवश्यकता है नहीं, वो तो सारी दुनिया के मालिक होते हैं, इनकी प्यास क्या नहीं होता। प्रभुपाद जी तो बहुत स्पष्टता कर देते हैं कि ऐसी अंध श्रद्धा से हमारी कोई गति नहीं है, वास्तविकता से हम दूर रहते हैं, हमें अंधे होने की कोई आवश्यकता नहीं, परिचय करने की ही आवश्यकता है। ये कोई जादू टोना से परिचय नहीं होता, मार मचोड़ के परिचय नहीं होता, परिचय तो व्यक्ति व्यक्ति में आपले होती है तब, और नाम के बल की प्राप्ति। तो भगवान कृष्ण ये कहते हैं कि सततम कीर्तयन तो माम, दूसरे का नहीं, माम यानी मेरा, भगवान कृष्ण के मूल नाम हरे कृष्ण
कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
ये भगवान के मूल नाम है, इनका जाप करना बताया। सततम कीर्तयन्तो माम। और उसके लिए ही यतन्तश्च दृढ़व्रता, प्रयत्न दृढ़व्रत बनकर प्रयत्न करना। नमस्यन्तश्च माम भक्त्या, मुझे ही नमस्कार करके मेरे भक्त नित्य युक्ता उपासते, नित्य युक्ता उपासते, 24 घंटे मेरी उपासना करते हैं। ऐसे नहीं कि मुझे एक लॉटरी चाहिए, चलो मैं शिव जी के मंदिर में इतने जाप कर लू। नित्य युक्ता उपासते, 24 घंटे का धंधा। जब जब आवश्यकता होती है तब हम मंदिर में जाते हैं, ये धंधा बेकार का। हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए तो भगवान ने सारी कुदरत बनाई है, ये देवता स्वतः देते हैं, फिर भी हमें भरोसा नहीं होता है, इसलिए वही मांगने के लिए इनके पास जाते हैं। यानी कि हम भगवान के पास मांगना है, इन पर श्रद्धा नहीं है, वो बताता है। जिन्होंने हमें हवा पानी से लेकर एक एक चीज दी है, चींटी को भी एक कण खाना देते हैं, हाथी को मन देते हैं, लेकिन मनुष्य को ही भगवान पर भरोसा नहीं, इसलिए इतना परेशान होता है। होने ही दो उसे, परेशानी ही इसकी जिंदगी है। और एक दूसरे की ईर्ष्या से आपको यदि कम परेशानी है तो वो खुद अपने आप को ज्यादा सुखी मानेगा। हा, 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 देखो मुझे कम परेशानी है, मूर्ख परेशानी तो है ही। कम होने से क्या तू सुखी होगा? बिल्कुल नहीं। परेशानी से कैसे छूटना हो तो जानता नहीं, मूर्खता बताता है। कहने का मतलब है कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संगम परम रजे, भगवान श्री कृष्ण के ही कीर्तन की आवश्यकता है ये भवसागर पार करने के लिए। ये रोकड़ा हिसाब है, रोकड़ा उधार नहीं है, राह नहीं देखनी पड़ती उसकी। तो जिस ढंग से श्रवणम कीर्तनम करना कहा है उस ढंग से करो, जप करो, भगवान के आशीर्वाद प्राप्त करो।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
जो कंजूस है ना वही बोलते नहीं, मुंह खुलते ही नहीं। भगवान पर ईर्ष्या होती है ना, इनका मुंह बंद रहता है, सिर्फ कानों द्वारा सुनकर ही निकाल देना उनका प्रयोजन होता है। जबरदस्ती से जैसे बिठाया गया ना, नहीं तो खाना नहीं देगी मम्मी, मैं यदि सत्संग में नहीं जाऊं तो सब जगह व्यापार लगा देता है जी। बच्चों को जबरदस्ती पड़ती है बिठाने में, बेहतर है मैं अपनी स्टडी करूं तो वो ठीक है। तो कहीं कहीं माँ बाप भी कहते हैं जा बेटा जा स्टडी कर, तुझे अभी हरि नाम करने की आवश्यकता नहीं है। अरे क्या बात है, आत्मा का खुराक है, उसे कहां तक भूखे मारोगे? सिर्फ पिंजड़े के लिए जिया करोगे, पंछी के लिए तो कुछ नहीं करोगे। जैसे पिंजड़ा पंछी के बिना बेकार होता है, तो आत्मा को छुपाए रखने में ये पिंजड़ा भी बेकार है। सही है, उसे जगाओ। किसी को कोई प्रश्न है? आप सभी माला करते हो ना, भगवान का नाम माला द्वारा करना है, वो भी अकलमंदी है। मन में मत करा करो, क्योंकि न तो फायदा करेगा न कुछ नहीं। मन में करने वाले तो कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि मन चंचल है ना, भाग जाता है ना। माला भगवान का नाम लेते समय कुछ न कुछ ऐसा परेशानी आती है, भगवान का नाम छोड़कर हम इसके पीछे भागते हैं। कोई कहता है कि ओ महाराज जी मैं तो कितने सालों से माला कर रहा हूं, लेकिन मुझे मेरा तो मन तो स्थिर है ही नहीं, ये भी कहने वाले हैं। स्थिर नहीं है तो पूछो, दिमाग स्थिर नहीं है तो क्या करना चाहिए। क्या करना चाहिए? नियंत्रण करना चाहिए, उसे कंट्रोल करो। कंट्रोल करने के लिए ही नाम दिया है, और नाम इतना बेकार लेते हैं तो जो कंट्रोल भी नहीं करते। देखो मंत्र क्या है, मन त्रायते इति मंत्र, मन को जो कंट्रोल करता है उसका नाम ही मंत्र है, और मंत्र में भगवान के नाम होते हैं, सही ना। फॉर्मूला, ये फॉर्मूला होती है, लेकिन जो फॉर्मूला का उपयोग नहीं करते ठीक ढंग से तो फायदा भी नहीं करेगा। मन को जो जो भटकता रहता है उसको स्थिर करने के लिए मंत्र जाप करते हैं। तो ऐसा बेकार जाप क्यों करें जो मन स्थिर ही ना रहे, ये भी तो बात होनी चाहिए। तो किस ढंग से करना चाहिए है? कोई तो ये कह देते कि अरे इसे तो बेहतर है नाम ही मत लो। फायदा क्या है? लेकिन ये तो मूर्खता का विषय है। अकलमंदी तो ये है कि जिस ढंग से यदि हमारी इंद्रियां ही नियंत्रित नहीं तो मन कैसे नियंत्रित रहेगा। इफ अवर सेंसेस आर नॉट कंट्रोल्ड द माइंड विल नॉट बी कंट्रोल्ड, हाउ वुड यू कंट्रोल योर सेंसेस। एंगेज योर सेंसेस इन द सर्विस ऑफ द होली नेम। जो नाम ले रहे हैं वो अपनी पांच पांच इंद्रियों से नाम की सेवा कराओ। कैसे करेंगे? उसे ही तो जप कहते हैं। जप में देखो पांच पांच इंद्रियां, सेंस ऑफ टच, सेंस ऑफ टेस्ट, सेंस ऑफ साइट, सेंस ऑफ हियरिंग एंड सेंस ऑफ स्मेल, ये सभी काम में आती है कि नहीं। देखो जो ध्यान पूर्वक पांच पांच इंद्रियों को नाम काम में लगाता तो मन को भागने की कोई आवश्यकता है, जो कोई खिड़की भी नहीं मिलेगी, ऐसा स्थिर हो जाएगा। ओ महाराज तो कहते माला पकड़ाते हैं, माला माला में क्या रखा है, और माला तो पकड़ के भी शर्म आती है। बूढ़े लोगों का धंधा है, हम जवान लोगों को माला पकड़ाते हैं। हम बूढ़े हो जाएंगे तब माला करेंगे। कभी कभी बूढ़े लोग अपने बहू बेटियों को परेशान करते हैं तो क्या कह देने, बूढ़े हो गए माला लेकर बैठ जाओ ने, हमें परेशान क्यों करते हैं, ऐसे कह देने जाओ ना मंदिर में माला करो, यहाँ यहाँ क्या परेशानी कर? बहुत हो चुकी, बहुत दिवाली देख ली, अब माला का समय है, फिर भी घर काम में दखलगिरी करते हैं, ऐसे बात है। अरे माला ही पकड़ने में तो इंद्रियां कंट्रोल हो जाएगी, देखो तो सही। जब माला करते हैं तो स्पर्श इंद्रियां आपकी काम करती हैं, तो देखना चाहिए आंखों द्वारा कि मैं सही ढंग से माला घुमा रहा हूं कि नहीं। जो समाधि में माला करने की आदत बनाता है तो एक मंत्र बोलते दस मन के खिसक जाते हैं। इसलिए आंख खोल के मंत्र करो, आंख को सेवा में, नाम की सेवा में लगाना, इसलिए स्पर्श की को भी लगाना। तुलसी है तो उसकी सुगंध भी लेनी होती है और जीभ में नाम का रस का स्वाद भी लेना है। रस मूर्ति है नाम भगवान का। पिछली बार कहा था ना, मुझे याद है कि कोको कोला बोला करो तो कोको कोला मुंह में घुस जाएगी क्या, स्वाद चढ़ेगा नहीं। लेकिन कृष्ण भगवान का नाम लेते ही इतना, अरे एक स्वाद नहीं बहुत स्वाद निकलते हैं। इसलिए नाम लेते थकते नहीं। जो जो कीर्तन में दम होता है ना, भगवान के ये हरे कृष्ण कीर्तन में दम है, ऐसा दम कोई और कीर्तन में नहीं निकला आज तक। नहीं तो ये कीर्तन के दम के अनुसार सारी दुनिया जब भगवान का नाम ग्रहण कर रही है, माला कर रही है, हा? तो हम खेत किस खेत की मूली, ये तो अपनी विरासत है, हमें स्वीकारने में क्या दम घुट जाएगा, शर्म आती है माला करने में। नहीं ये तो बहुत बड़ा मौका है समझदारी बनाने का कि भगवान के नाम जप छोटे बच्चों को भी कराना चाहिए। कितनी माला करता है, दो माला करने वाले कितने हैं बच्चे है? अरे तिलक लगाकर अच्छे तो दिखाई देते हैं लेकिन माला करके और अच्छे बनेंगे, उसका क्या है? भगवान का नाम जब कितने करते हैं सब में, जरा हाथ तो ऊंचा करो आप तो करती हैं तो हाथ ऊंचा करो ना, अरे हिम्मत रखो, कोई यहाँ फांसी पर तोड़ा चढ़ा देगा, सब घबराते हैं। जय, अरे जो करते हैं दो आदमी खड़े कर सकते हैं। दो कर रहे हैं तो उठा हाथ, कितने अब देखो अब आपके पास जो जो बैठे हैं विनती करो, माला करो प्लीज, चांद करो, आपके बगल में बैठे हैं इनको बताओ नाम जप की महिमा क्यों करना चाहिए। ऐसे शर्म से क्या फायदा, ये शर्म थोड़ा भगवान के सामने तो शर्म छोड़नी पड़ती है। भगवान के पास क्या छुपा सकते हैं, तो फिर जब वो सब कुछ जानते हैं तो शर्म क्यों रखते हैं? घर में कोई परेशान करेगा भगवान का नाम लोगों को, ऐसा है? इनको भी बुलाओ, इनको भी माला पकड़ा देते हैं बाद में देखो। सही है, भगवान के नाम में शर्म थोड़ी होनी चाहिए। नारायण का नाम लेते ही सब कुछ सही होता है, जो लेने में रुकावट देता है इनका कोई उद्धार नहीं होता। इसीलिए भगवान का नाम छुपके छुपके भी माला कर लेनी चाहिए इसके ही हित में। यदि चलो समझो एक उदाहरण देते हैं, पत्नी की इच्छा तो है लेकिन पति देव जरा बहुत बड़े ज्ञान के भंडार हैं, इनके पास कुछ और अच्छा रास्ता है उद्धार के लिए तो समझ में आया, लेकिन पत्नी यदि पति को सचमुच इसकी वफादार है, प्रेम करती है, तो उसे क्या करना है, छिपके छिपके भगवान का नाम उसके सुख के लिए करना चाहिए, उसकी सुरक्षा के लिए करना चाहिए, भगवान से प्रार्थना करना चाहिए कि आप जैसे बड़े हैं, लेकिन कभी कभी पतिदेव अहंकार से अपने आप को कुछ और मानते हैं, लेकिन भगवान के सामने तो सबको लंबा होना ही होता है, दंडवत करना ही होता है। तो अकलमंदी वहां है, आपको फायदा करेगी उसको भी फायदा करेगी। तो शर्म की तो बात ही नहीं होनी चाहिए। उसी तरह पतिदेव भी यदि पत्नी को सचमुच प्रेम करते हैं तो उसे भगवान की माला करनी चाहिए, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए छुपके छुपके। तो देखो वो कितना फायदा करता है। चुपके चुपके करो, वैसे तो चुपके चुपके करने की तो बहुत आदत है सबको, एक और बढ़ा दो, एक और बढ़ा दो, भगवान के नाम को भी छुपके छुपके कर लो, किसी को पता नहीं चला। सही है, कहा है शास्त्र में कहा है। चार चीज छुपाने को कहा, अपने इष्ट देव को अपने हृदय में छुपा के रखो। मैं इसका भगत हूं, मैं इसका भगत हूं, ऐसे जाहिरात मत करो, अपने इष्ट देव को हृदय में छुपाओ, अपने गुरु को हृदय में रखना। बहुत उस गुरु के झंडे मत उड़ाना, नहीं तो बेइज्जती भी कर सकते हो। तीसरा है अपनी माला को छुपाओ, मंत्र इस तरह छुपके छुपके करो, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, कोई देख नहीं जा। और अपनी जो माला है ना, माला की झोली, किसी को मत देना, उसको भी छुपा के रखना। चार चीज छुपाने को कहा है, अन्य चीज तो बहुत छुपाते हैं, सही ना। लेकिन भगवान तो सब जानते हैं क्या छुपा रहा है, वो ही देखते हैं, क्या दे रहा है वो नहीं देखेंगे, क्या छुपा रहा है वही देखेंगे। सही, आप सबसे हमारी ये प्रार्थना है कि भगवान का नाम माला लेकर छिपके छिपके करो, किसी को पता भी नहीं चले। सही, बाद में देखो कितनी हिम्मत आती है आपको। ये यही सत्य का, सनातन सत्य का बल आप प्राप्त करो, कमजोर मत रहो, कमजोरी से किसी का उद्धार नहीं। हर एक को अपनी अपना एरोप्लेन उड़ाना है, अपने जीवन का एरोप्लेन स्वयं को उड़ाना होता है। आप कहोगे कि हम तो उड़ाना जानते ही नहीं, लेकिन मृत्यु के समय में तो वही एरोप्लेन उड़ाना पड़ता है, जानते हो न जानते हो, नहीं जानते हो तो डूबोगे, जानते हो तो उड़ोगे। बेहतर जान लो अपनी फ्लाइट, अपना कोर्स, अपनी दिशा, सब गंतव्य स्थान कहाँ जाना है वो भी तय कर लो अभी से ही। घर में किसी को नहीं बुला सकते, कम एंड हेल्प मी टू फ्लाई आउट माय एयरप्लेन, नो वे, टाइम इज अप। अपना भी टाइम अप हो गया। आप सभी का धन्यवाद।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
आप सभी का धन्यवाद।